तारीख 25 मई दिन सोमवार। नमस्कार, भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुराग शर्मा। अमेरिका ने कहा इराकी सेना में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने का जज्बा नहीं।
The Iraqi forces just showed no will to fight. They were not outnumbered. In fact, they vastly outnumbered the...
आज से शुरू हो रही रैलियों में मोदी सरकार गिनाएगी उपलब्धि, लेकिन एक साल में विपक्ष कितना रहा कामयाब?
कांग्रेस विपक्ष के रूप में जो एकदम साफ हो गया था वो अभी बाकी है। इतना खराब नहीं गया कांग्रेस के लिए जितना खराब ये वर्ष हो सकता था।
साथ में बात आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जीत की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि रमादी शहर में इराकी बलों की पराजय से पता चलता है कि उनमें इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से निपटने का जज्बा नहीं है। इराक की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख कार्टर के इस बयान को अवास्तविक और निराधार बताकर खारिज कर रही है। इराक की सरकार ने इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में शिया लड़ाकों को तैनात किया है। इलाके में भीषण लड़ाई होने की खबरें हैं। प्रधानमंत्री हैदर अलाबादी ने बीबीसी से कहा कि उनकी सेना रमादी को कुछ ही दिनों में इस्लामिक स्टेट से मुक्त करा लेगी। वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता लियोपोल्ड लोपेज ने तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए भूख हड़ताल की घोषणा की है। लोपेज बीते एक साल से जेल में बंद हैं, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लोपेज कह रहे हैं, हम वेनेजुएला की सड़कों पर एक विशाल लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आओ दिखाएं, हम वेनेजुएला में बदलाव चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता लियोपोल्ड लोपेज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शिया हिजबुल्ला आंदोलन के नेता हसन नसरल्ला ने कहा है कि सीरिया में लड़ रहे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों की वजह से दुनिया अप्रत्याशित खतरे का सामना कर रही है। वीडियो लिंक के जरिए अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए हसन नसरल्ला ने पहली बार माना कि हिजबुल्ला ने पड़ोसी देश सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति बसर अल असद के समर्थन में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने लेबनान में अपने आलोचकों से कहा कि वे सीरिया में हिजबुल्ला के दखल का समर्थन करें। लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने सिरते शहर के पास लंगर डाले एक जहाज पर हवाई हमला किया। सिरते शहर पर विरोधी सरकार का दबदबा है। मान्यता प्राप्त सरकारी बलों के प्रवक्ता का कहना है कि जहाज को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उससे हथियार और लड़ाके उतारे जा रहे थे, लेकिन सिरते शहर से मिली खबरों में कहा गया है कि जहाज में ईंधन भरा हुआ था जिसमें हवाई हमले की वजह से आग लग गई है। इससे समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश छोड़ने की कोशिश कर रहे प्रवासी उनके देश की छवि खराब कर रहे हैं। शेख हसीना ने बिचौलियों की धर पकड़ के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर अवैध तरीके से जाने वाले लोगों को मानसिक रोगी बताया है जो अमीर बनने के सपने के पीछे भाग रहे हैं। शेख हसीना का ये बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश और पड़ोसी म्यांमार के हजारों प्रवासी अंडमान सागर में फंसे हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं अनुराग शर्मा। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल का 8वां संस्करण जीत लिया है। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रन से हराया। इस बारे में आदेश कुमार गुप्त से ब्यौरा लेंगे, लेकिन पहले बात इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ाई की। अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि इराकी सेना में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने का जज्बा नहीं है। उन्होंने ये टिप्पणी रमादी शहर में इराकी सेना की हार के बाद की है। हालांकि इराकी सरकार के एक अधिकारी ने इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अमरीका ने इराकी सेना का चुभता हुआ आकलन किया है। और ब्यौरे के साथ संदीप सोनी।
अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने इराकी सेना पर आरोप लगाया है कि उसमें लड़ने का जज्बा नहीं है और इसी वजह से इस्लामिक स्टेट के लड़ाके आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। CNN को दिए एक साक्षात्कार में कार्टर ने कहा कि समस्या इराकी बलों की संख्या को लेकर नहीं है।
The Iraqi forces just showed no will to fight. They were not outnumbered. In fact, they vastly outnumbered the opposing force.
इराकी बलों ने लड़ने की इच्छा ही नहीं दिखाई। इराकी बल में संख्या की कमी नहीं है। इसके बाद भी वे लड़ नहीं पा रहे हैं। वे मैदान से पीछे हट रहे हैं।
इराकी सेना के प्रशिक्षण में अमरीकी भूमिका का जिक्र करते हुए कार्टर ने कहा कि अमरीका इराक को प्रशिक्षण और उपकरण देना जारी रखेगा, लेकिन इराक के सहयोग के बिना अमरीका कितना कर पाएगा।
We can give them training, we can give them equipment, we obviously can't give them the will to fight.
हम उन्हें उपकरण और प्रशिक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लड़ने का जज्बा तो नहीं दे सकते। मैं आशा करता हूं कि वो लड़ने का जज्बा पैदा कर पाएंगे, क्योंकि जब वो लड़ेंगे तभी इस्लामिक स्टेट को हराया जा सकेगा।
वाशिंगटन में मौजूद BBC संवाददाता रजनी वैद्यनाथन का कहना है कि कार्टर के इस बयान के जरिए अमरीका ने इराकी सेना का मूल्यांकन किया है। इससे इराक के उन आलोचकों को बल मिला है जो कहते रहे हैं कि इराक में अमरीकी सैनिकों के उतरने के बाद ही इस्लामिक स्टेट को हराया जा सकेगा, हालांकि अमरीका इससे इनकार करता रहा है। दूसरी ओर इराक सरकार की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी ने कार्टर के इस बयान को अवास्तविक और निराधार बताया है। इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इराकी सरकार ने अब शिया लड़ाकों को तैनात किया है। ये लड़ाके अनबार प्रांत की राजधानी रमादी को इस्लामिक स्टेट से नहीं छुड़ा पाए हैं, लेकिन रमादी के पूर्व में स्थित हुसैबा शहर पर शिया लड़ाकों ने दोबारा नियंत्रण कर लिया है। इलाके में भीषण लड़ाई होने की खबरें हैं। रमादी इराक की राजधानी बगदाद से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। रमादी पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा इराकी सरकार के लिए शर्मिंदगी और चिंता की बात है। हजारों लोगों को रमादी से पलायन करना पड़ा है।
और अब शिया लड़ाकों के भरोसे है इराकी सेना।
नमस्कार भारत, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 और 8:00।
एनडीए सरकार को कल एक साल पूरा हो रहा है। भाजपा का इरादा इस मौके पर पूरे देश में 200 बड़ी रैलियों के जरिए अपनी उपलब्धियां बताने का है। शुरुआत आज मथुरा से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद दीनदयाल उपाध्याय के पुश्तैनी गांव नगला चंद्रभान में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी इस मौके पर कुछ योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल सरकार की खामियां उजागर करने के लिए कर रही है। सरकार और विपक्ष की खींचतान को लेकर एक रिपोर्ट के साथ निखिल रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में होंगे। वो एक रैली के जरिए देश के सामने अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल का ब्यौरा पेश करेंगे। मोदी ने बीते साल 26 मई को प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला था। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार एक साल के अंदर हुए काम को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। उधर विपक्षी दल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भाजपा की रैलियों के पहले ही कांग्रेस पत्रकार वार्ताओं के जरिए सरकार की खामियां उजागर करने में जुट गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा,
जो देश की जनता को सपना दिखाया था, जो समाज के हर वर्ग को वायदा किया गया था, उससे आशा का माहौल था, परिवर्तन हुआ था आशा पर, उम्मीद पर। आज उसका रिवर्सल हुआ है, अब निराशा है। सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया गया है। सब निर्णय नीतिगत निर्णयों का भी केंद्रीयकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, जो हमारे प्रजातांत्रिक जो मूल्य है उसको आघात पहुंचाता है और संसदीय प्रणाली को भी चोट पहुंचाता है।
आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सिर्फ यूपीए की योजनाओं को नाम बदलकर लागू कर रही है। कांग्रेस के इस रुख पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में निराशा का माहौल एक साल पहले तक था, लेकिन अब हर तरफ माहौल बदल चुका है। पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कहा,
10 वर्षों तक जब यूपीए का शासन था, निराशा का माहौल था। और क्यों था? निराशा का माहौल तब होता है जब विश्वास नहीं होता है, अविश्वास होता है। और यूपीए के समय जनता का सरकार पे विश्वास नहीं, सरकार में मंत्रियों का प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। स्वाभाविक रूप से अविश्वास में जो निकल के आया वो पॉलिसी पैरालिसिस था, जिसके कारण पूरा सिस्टम चरमरा गया था। एक वर्ष में मोदी जी ने विश्वास कायम किया है अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर। एक वर्ष में किस प्रकार पॉलिसी पैरालिसिस से हम प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग तक आए हैं और उससे इकोनॉमी कैसे बदला है, यह भी हमने देखा है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी इन्हीं उपलब्धियों को देश भर में पहुंचाने के लिए अगले 5 दिन में 200 रैलियां करने जा रही है। वहीं 1 साल विपक्ष में बिता चुकी कांग्रेस पार्टी भी अब कमर कसकर तैयार है।
1 साल में अच्छे दिन आए या नहीं, इस पर बहस जारी है। क्या कांग्रेस कम संख्या के बावजूद सरकार पर नकेल कसने में कामयाब हुई और बाकी दल अपनी भूमिका पर कितना खरे उतरे? यही सवाल पूछे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से।
शुरुआती दिनों में मतलब पिछले साल मई के बाद, और आप यूं समझिए कि अगस्त तक कांग्रेस तो काफी संशय में और परेशानियों से घिरी रही, खासतौर से अपने संगठन को लेकर के। लेकिन पिछले नवंबर के बाद से कांग्रेस की भूमिका आक्रामक हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने लेटली यानी कुछ देर से अपनी ताकत को पहचाना है, और वो ताकत है उसकी राज्यसभा में एक बड़ी संख्या, क्योंकि लोकसभा में तो कांग्रेस के इतने सांसद नहीं है कि वो कोई निर्णायक रूप से कोई किसी चीज को रोक सके या कोई बड़ा काम कह सके। दूसरे, उसके पास लोकसभा में बहुत अच्छे वक्ता भी नहीं है। तीसरे ये कि एनडीए के जो कुछ महत्वपूर्ण बिल थे वो राज्यसभा में ही आकर अटके। तो इनका सकल प्रभाव ये रहा कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में जो एकदम साफ हो गया था वो अभी बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि इतना खराब नहीं गया कांग्रेस के लिए जितना खराब ये वर्ष हो सकता था।
गैर कांग्रेसी दल, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं?
सर, विपक्ष के रूप में आप जिन अन्य दलों की भूमिका पूछ रहे हैं वो मुझे सदन के अंदर मुझे ऐसी कोई विशेष बात उसमें नहीं दिखाई पड़ी। सदन के अंदर केवल कांग्रेस ही अपने उसको ज्यादा दबाव को दिखा पा रही है।
1 साल के अंदर जो विपक्ष की पूरी भूमिका है उससे जो संकेत मिलते हैं, क्या उससे लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए विपक्षी दल कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं?
देखिए, अभी जब राज्यसभा के चुनाव 2 साल बाद जब संख्या बदलेगी तब मोदी सरकार के सामने ये चुनौती उतनी बड़ी नहीं रह जाएगी जितनी आज है। तो विपक्षी दल अगले 5 साल की, जहां तक ये अगले 2-3 साल की बात है, सबसे बड़ा जो परीक्षण है वो है बिहार में जो इस साल चुनाव होने जा रहा है। यदि विपक्षी दल किसी प्रकार से एक होकर के बीजेपी को हराने में सफल हो पाए तब तो उनकी कोई भूमिका समझ में आती है, क्योंकि उसके बाद के जो चुनाव हैं, जैसे असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, फिर बाद में बंगाल में है, यूपी में तो खैर बाद में होगा, पर यूपी में भी होगा इसके बाद, तो ये चुनाव जो केरल में चुनाव होगा, तो इन चुनावों में भूमिकाएं देखने को मिलेंगी। पर उसके पहले अगर बिहार में कुछ हो पाता है, इसमें गठबंधन बन पाए या विपक्षी दल एक जगह आ सके जिसमें कांग्रेस की भी कोई भूमिका हो, तब मैं कह सकता हूं कि तब शायद राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका देखने को मिलेगी। कांग्रेस का जो भविष्य है वो बाहरी मीडिया में या बाहरी व्यवस्था में हो सकता है, लेकिन सदनों के अंदर अभी कांग्रेस जो कहीं पर भी, चाहे वो विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, और अगर राज्यसभा में जो संख्या आप प्रोजेक्टेड है तो उसमें कांग्रेस की संख्या घट जाएगी काफी।
ये थे प्रमोद जोशी, जो कह रहे थे कि छोटे विपक्षी दलों के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो बिहार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। इन दिनों देश में इस बात की भी चर्चा है कि मोदी सरकार ने 1 साल में क्या काम किया। बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला में हम हर रोज किसी एक मुद्दे पर सरकार के वादे का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। इस कड़ी में आज बात भ्रष्टाचार से निपटने के वादे की। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारतीय इकाई के प्रबंध निदेशक आशुतोष कुमार मिश्रा के मुताबिक भाजपा सरकार के वादे ज्यादा थे और उनके पूरे होने के लिए 1 साल कम समय है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने उनसे बात की।
बात हुई ब्लैक मनी की। देखिए, ये आसान नहीं है कि ब्लैक मनी 1 साल के अंदर वापस लाया जा सके। अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई, प्रॉपर स्टडी जो क्वांटिफाई कर सके कि कितनी ब्लैक मनी है, कैसे जनरेट हो रही है, क्या तरीके हैं। हम ब्लैक मनी की बात करते हैं तो हमेशा ब्लैक मनी जो बाहर की तरफ है उनकी बात करते हैं, जो स्विट्जरलैंड में या अदर कंट्रीज़ में है। हम डोमेस्टिक ब्लैक मनी जो हमारे रोज़ जनरेट हो रहे हैं, जो हमारे टैक्सेस रिफॉर्म्स की बातें हो रही है वो नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, लोगों को कंपेल किया जा रहा है हायर रेट पर प्रॉपर्टी खरीदने को। ब्लैक में सब लोग पैसे लेते हैं, वाइट में लेने से डरते हैं। सो उस पर कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसेशनल नहीं बन सकता इलेक्शन टाइम में।
ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के 1 साल हो गए हैं और विदेश नीति पर खासा ध्यान रहा, लेकिन ये सरकार पिछली तमाम सरकारों से भिन्न होगी, तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपके हिसाब से पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार का जो इंडेक्स है, जो मापदंड है, वो भारत में कैसा रहा?
देखिए, एक तो मेगा स्कैम्स जो पहले हुए हैं यूपीए 2 के टाइम में, वैसे मेगा स्कैम्स अभी तक नोटिस में नहीं आए हैं। सो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा ये कहना कि मेगा स्कैम्स हुए या नहीं हुए हैं। पेटी करप्शन जो एक आम आदमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो अभी भी है, हालांकि पूरी तरीके से वी कांट ब्लेम ऑन द मोदी गवर्नमेंट, उसमें स्टेट राज्य सरकारों का भी उतना ही योगदान है। और तो ये कहना और इस बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ये क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा कि भ्रष्टाचार का लेवल कम हुआ या ज़्यादा हुआ। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि मोदी सरकार कितना सीरियस एंटी करप्शन के इश्यूज़ को लेके, अभी भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की पोस्ट खाली है, CIC की पोस्ट खाली हैं और बहुत से स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट खाली है। लोकपाल पे जो बातें हो रही हैं, लोकपाल अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो बिल थे उस पर एक्ट जो बनने थे प्रॉपरली वो भी नहीं बने हैं। अदर एंटी करप्शन बिल्स पेंडिंग है।
अभी जल्दबाजी होगी ये भी हम कह सकते हैं क्या?
जल्दबाजी मेरे ख्याल से एक साल काफ़ी टाइम था, एटलीस्ट अपॉइंटमेंट तो करने ही चाहिए थे। ठीक है, CVC का मामला जरूर कोर्ट में चला गया था, बट CIC एक इम्पॉर्टेंट है। और जब इंफॉर्मेशन कमीशन लॉन्ग पेंडिंग अपील्स हैं, RTI जहाँ तक इनपुट आ रहा है कि RTI पर रिप्लाई भी आने बहुत कम हो गए हैं, एक टैक्टिक्स बन रही है कि रिप्लाई मत दिए जाए, RTI को वीक किया जाए। सो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव कमिटमेंट जो इलेक्शन टाइम में था वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है एग्जीक्यूशन में।
हर सोमवार की तरह वक्त हो गया है पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी सुनने का। सुनते हैं इस बार वसतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं।
बैंक ऑफ कॉमर्स एंड क्रेडिट इंटरनेशनल BCCI याद है ना, विश्व का 7वां बड़ा बैंक कहलाता था। 73 देशों में 417 शाखाएं थी और फिर 19 वर्ष तक चमत्कार दिखाने के बाद जुलाई 1991 में मनी लॉन्ड्रिंग और बैक रूम बिजनेस के आरोपों तले दबके मर गया। अकाउंट होल्डर्स को 20 अरब डॉलर का टीका लगा और अगले 20 वर्ष लगे 75% डूबी हुई रकम वापस निकालने में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हर्षद मेहता भी याद आता होगा। अप्रैल 1992 में सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बम फोड़ा कि मेहता जी की ब्रोकर कंपनी ने जाली रसीदों पे स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए तकरीबन 8 वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और भनक भी न पड़ने दी। मुंबई हाईकोर्ट ने 27 में से एक मुकदमे में हर्षद मेहता को 5 साल कैद की सजा सुनाई, मगर बाकी केसों का फैसला होने से पहले ही हर्षद मेहता जी चल बसे। 2009 का सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज कांड भी आप कहां भूले होंगे। रामलिंगा राजू भारत के IT रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय, सत्यम की शाखाएं 30 देशों में, सत्यम विश्व की जानी मानी नैस्डेक एक्सचेंज में लिस्टेड, अच्छी खासी इज्जत और साख थी। मगर गुरुजी ने चुंधिया देने वाला जो मुनाफा अकाउंट्स की किताबों में दिखा दिया वो असल में था ही नहीं। 7,000 करोड़ रुपए के किताबी हेरफेर से शेयर मार्केट को 14,000 का चाकू लग गया। राजू जी महाराज 7 वर्ष के लिए जेल यात्रा पे चले गए, 32 महीने काट चुके हैं। इसके बाद फिर से सत्यम शिवम सुंदरम। इन दिनों पाकिस्तान में एग्जैक्टली हर आदमी एग्जैक्ट IT कंपनी की बात कर रहा है। जब से न्यूयॉर्क टाइम्स के डेक्लिन वॉल्श ने जाली डिग्रियों की स्टोरी का हीरो एग्जैक्ट को करार दिया है, तब से हर देसी TV चैनल खुद को दूध का धुला समझते हुए एग्जैक्ट को एक आध चपत मारना जरूरी समझ रहा है। और फिर ये कारोबारी जलन भी कि एग्जैक्ट वाले अपना TV चैनल लाने की जरूरत कैसे कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की बात मान लें तो ये इंडस्ट्री हर साल लगभग $2.5 बिलियन का कारोबार करती है, लेकिन एग्जैक्ट के मालिक शोएब शेख की बात पे यकीन कर लें तो सिर्फ 18 वर्ष पहले बस एक कमरे से शुरू होने वाली आज देश की सबसे बड़ी IT कंपनी की संपत्ति की वैल्यू $20 बिलियन है, 25,000 मुलाजिम है, 120 मुल्कों में कारोबार फैला पड़ा है, एग्जैक्ट के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स 2 बिलियन लोग विश्व में इस्तेमाल करते हैं। मगर अजीब बात यह है कि जो दो पाकिस्तानी IT कंपनियां देश की सबसे बड़ी कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनमें एग्जैक्ट शामिल नहीं। एग्जैक्ट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की मेंबर भी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद मरकजी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने एग्जैक्ट के रिकॉर्ड की छानपटक और पूछताछ शुरू तो कर दी है, मगर मेरा एक सवाल है, दुनिया भर की सरकारें आखिर खुद से क्यों नहीं जागती और किसी ना किसी अंगले कंगले सहाफी को ही उनका कंधा जोर जोर से पकड़ के हिलाना क्यों पड़ता है? क्या ये सरकारी नींद ही तो असल में सबसे बड़ा कांड नहीं?
ये थे वसतुल्लाह खान अपने अलग ही अंदाज में इस बार चिंता जताते हुए कि आखिर सरकारों को पत्रकारों से जागने की जरूरत क्यों पड़ती है। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज होगी नजर, सुनिए संदीप सोनी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आज मथुरा में रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर दिल्ली में ही एक रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE आज 12वीं के नतीजे घोषित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद ओलमर्ट के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में यरूशलम की अदालत सजा सुनाने वाली है। इराक की सीरिया से लगती सीमा पर इस्लामिक स्टेट ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रमादी शहर पर दोबारा नियंत्रण के लिए शिया लड़ाके इस्लामिक स्टेट से जूझ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में सुधार के मुद्दे पर बात करने के लिए ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन आज यूरोपीय कमीशन के प्रमुख जीन क्लॉड जंकर से मुलाकात करेंगे। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक हफ्ते से जारी ईंधन संकट गहराता जा रहा है, इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ा है।
वक्त हो गया है अखबारों की समीक्षा का। संदीप सोनी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। संदीप, क्या कहते हैं आज के अखबार?
शुरुआत करते हैं अनुराग इंडियन एक्सप्रेस से। अखबार के पहले पन्ने पर पहली खबर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, जहां गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जहां 200 से अधिक लोग गर्मी की वजह से मारे जा चुके हैं। ये जरा इस तरफ देखें, इंडियन एक्सप्रेस का जो पहला पन्ना है, बहुत दिलचस्प तस्वीर छपी है इसके पहले पन्ने पर। तेलंगाना के करीम नगर की ये तस्वीर है, जहां ट्रांसफार्मर्स ठीक से काम करें इसके लिए उन्हें बड़े बड़े कूलर की मदद से ठंडी ठंडी हवा पहुंचाई जा रही है।
जी बिल्कुल संदीप, दिल्ली में भी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है
और आने वाले दिनों में राहत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अगला अखबार रुख कर रहे हैं द हिंदू। अखबार ने बड़ी ही मार्मिक तस्वीर छापी है। तस्वीर में 16 साल का लड़का है, नाम है हामिद नज़ीर बट। खबर में लिखा है कि ये लड़का उत्तर कश्मीर में एक गांव का रहने वाला है, जहां बीते गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी। इस लड़के को इतने छर्रे लगे कि उसके पूरे चेहरे पर छेद ही छेद नज़र आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे और भी मामले उनके सामने आए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अगला अखबार, इसकी बात करें तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनी नहरों में डुबकी लगाते बच्चों की तस्वीर के साथ अखबार ने जो सुर्खी लगाई है वो कहती है कि दिल्ली में एक तो जानलेवा गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बिजली जो है वो आँख मिचोली का खेल खेल रही है, यानी आफत में कहीं कोई कमी नहीं है। और अनुराग, दिल्ली तो राजधानी है देश की, यहाँ ये हालात है तो देश के बाकी हिस्सों में, छोटे शहरों, कस्बों, गांव, देहातों में इस मौसम में क्या हाल होगा, क्या बिजली की किल्लत से स्थिति होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पूरे देश में गर्मी की वजह से 500 लोगों के मारे जाने की खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर ही ये खबर है। और अनुराग, ये बताइए कि नदी में बसें चलती हुई देखी है आपने?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
केंद्रीय परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से दैनिक भास्कर ने खबर दी है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-2 साल में दिल्ली से आगरा के बीच यमुना में रिवर बसें नजर आएंगी, इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है।
हाँ संदीप, पहले भी नितिन गडकरी इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो कह चुके हैं कि गंगा पर भी हम लोग इस तरह के कुछ वाहन चलाएंगे।
अब जब चलेंगे तब चलेंगे। दैनिक भास्कर में ही ये खबर है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से कहा है कि उसके मंत्री घरेलू और विदेशी यात्राओं पर कितना खर्च करते हैं, सरकार इसका ब्यौरा सार्वजनिक करे। खबर में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के संबंध में किसी भी किस्म का ब्यौरा देने से मना करता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी विदेश यात्राएं की हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं
जी।
अच्छा, दैनिक जागरण का जिक्र करें तो IPL के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराने वाली मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी, देखिए अपने हाथ में ट्रॉफी थामे नजर आ रही हैं, साथ में सचिन तेंदुलकर भी हैं। बिल्कुल पहले पन्ने पर, सबसे ऊपर दैनिक जागरण ने यह खबर लगाई है। नवभारत टाइम्स का रुख करें तो आज से खुली जंग, इस शीर्षक से अखबार लिखता है कि दिल्ली में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल आज से केंद्र के साथ अधिकारों की खुली जंग शुरू करेंगे और कुछ मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार को। इसी खबर को दैनिक भास्कर ने सुर्खी लगाई है, आपात सत्र से पहले जंग का ऐलान, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र की धौंस से नहीं डरेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। अच्छे दिन नहीं बुरी रातें याद आ गईं। ये एक मूल्यांकन की शक्ल में दैनिक जनसत्ता के ही बॉटम स्प्रेड में छापा है जनसत्ता ने कि नरेंद्र मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसका मूल्यांकन भले ही एक साल में नहीं हो सकता पर दिशा क्या है वो तो दिखनी चाहिए।
डीपी त्रिपाठी का लेख अगर मैं सही देख पा रहा हूँ।
जी बिल्कुल सही,
एनसीपी के नेता। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खबरें खेलों की दुनिया से। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 8वें सीजन को अपने नाम कर लिया। कोलकाता में खेले गए फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रन से हरा दिया। पूरा ब्यौरा आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में आईपीएल 8 की विजेता बनी मुंबई इंडियंस, जिसने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 41 रन से करारी मात दी। चेन्नई के सामने जीत के लिए 203 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन फाइनल अपने नाम करने की उनकी तमन्ना तब धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी जब उनका स्कोर 13.3 ओवर में 3 विकेट खोकर केवल 99 रन था। उसके बाद बढ़ती रन औसत ने उनके बल्लेबाजों के हौसले तोड़ दिए। चेन्नई के ड्वेन स्मिथ ने 57, सुरेश रैना ने 28 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 18 रन बनाए। चेन्नई की टीम 8 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। ड्वेन ब्रावो ने 36 रन देकर 2 विकेट लिए। इससे पहले टॉस तो धोनी ने जीता, लेकिन बल्लेबाजी की दावत दी मुंबई को और उसका जमकर लुत्फ उठाते हुए लैंडन स्मिथ ने 68 और कप्तान रोहित शर्मा ने 50 रनों की पारी खेली। इसके बाद किरेन पोलार्ड ने 36 और अंपाती रायडू ने भी नाबाद 36 रन ठोककर मुंबई के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन तक पहुंचा दिया। जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस का जश्न शुरू हुआ, जिसमें पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और जोंटी रोड्स भी शामिल थे। मुंबई दूसरी बार चैंपियन बनी। वहीं कल पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 2 गेंद शेष रहते 2 विकेट से बात दी। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य था, जो उसने मुख्तार अहमद के 62 और उमर अकबल के 30 रनों की मदद से 19.4 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वूसी सिम्बाडा के 49 और सीन विलियम्स के नाबाद 58 रन की मदद से 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 2-0 से सीरीज अपने नाम की। उधर पहली पारी के आधार पर 134 रनों से पिछड़ी इंग्लैंड ने दूसरी पारी में तब राहत की सांस ली जब लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन कल कप्तान एलिस्टियर कुक ने नाबाद 153 और बेन स्टोक्स ने 101 रनों की शतकीय पारी खेली। कल जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 429 रन था। अब इंग्लैंड के पास 295 रन की बढ़त है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। उधर टेनिस के कोर्ट पर फ्रेंच ओपन में कल रोला गैरा की लाल बजरी पर दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, 8वीं वरीयता हासिल स्टेन वावरिंका और 22वीं वरीयता हासिल जर्मनी के फिलिप कोल श्राइबर पुरुष एकल वर्ग के पहले दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। वहीं महिला एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, 9वीं वरीयता हासिल रूस की एकेटेरिना माकारोवा और सर्बिया की बोजाना जोवानोवस्की भी दूसरे दौर में पहुंच गई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा है कि रमादी शहर में इराकी बलों की पराजय से पता चलता है कि उनमें इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से निपटने का जज्बा नहीं है। इराक की डिफेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख ने कार्टर के इस बयान को अवास्तविक और निराधार बताया है। वेनेजुएला के प्रमुख विपक्षी नेता लियोपोल्ड लोपेज ने तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए भूख हड़ताल की घोषणा की है। शिया हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने कहा है कि सीरिया में लड़ रहे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों की वजह से दुनिया अप्रत्याशित खतरे में पड़ गई है। लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने सिरते शहर के पास लंगर डाले एक जहाज पर हवाई हमला किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश छोड़ने की कोशिश कर रहे प्रवासी उनके देश की छवि खराब कर रहे हैं।
नमस्कार, भारत की पहली सभा यहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। 8 बजे फिर होगी मुलाकात। अनुराग शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।